योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ श्री राम को वैराग्य की शिक्षा देते हैं। वशिष्ठ श्री राम से एक कहानी कहते हैं, एक हाथी की। एक हाथी है जो बहुत शक्तिशाली है, वन में अकेला विचरण करता है, अपने परिवार के साथ रहता है। एक दिन एक दुबला पतला आदमी उसे पकड़ लेता है और अपने घर ले आता है। हाथी पहले विरोध तो करता है, परंतु वो व्यक्ति बहुत चतुर है। चतुराई से उसे पकड़कर वो ले आता है, बांध के रख देता है और रोज उसे नुकीली वस्तु चुबाता है। धीरे धीरे वो हाथी अभ्यस्त हो जाता है और इसी को जीवन की वास्तविकता मानने लगता है। केवल दो ही अनुभव है, जब वो नुकीला डंडा उसे चुभता है तो उसे दर्द होता है, तो एक तो दर्द और जब उसे नहीं चुभता है तो सुख। बस ये दो ही अनुभव उसके जीवन में रह जाते हैं। जब वो चुभता है तो दुख होता है, जब नहीं चुभता है तो सुख। वो ये भूल ही जाता है धीरे धीरे कि मैं भी कभी स्वतंत्र था। वो ये भूल ही जाता है कि ऐसा भी मेरा कोई जीवन था। बस ये दो ही अनुभव उसका जीवन बन जाते हैं। पर एक दिन अचानक वो कोशिश करने लगता है हाथी उस पिंजरे से छूटने की, और धीरे धीरे सफल भी हो जाता है और छूट जाता है और भागने लगता है। जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है कि मेरा हाथी छूट गया और भाग रहा है, वो पेड़ की टाली पर खड़ा हो जाता है और नीचे कूदता है ताकि हाथी के ऊपर सवार हो जाए, पर गलती से वो नीचे गिर पड़ता है हाथी जहाँ भाग रहा है उसके एकदम सामने। हाथी उस व्यक्ति को देखता है, उसके पास दो दांत है नुकीले, उन दोनों दांतों से उस व्यक्ति को मार सकता है, परंतु सबकॉन्शियस कंडीशनिंग उस हाथी की ऐसी है कि उसमें उतना साहस नहीं होता है कि उसे मारूं, और जो अब तक का अभ्यास था बस दो ही, सुख और दुख का, यह अनुभव उसे परवश कर देता है या फिर वश कर लेता है, और वो वहां से भाग जाता है जंगल की ओर। वो व्यक्ति जो धड़ाम से ऊपर से गिरा था घायल हो जाता है, कुछ दिन इलाज करता है अपना, स्वस्थ होता है और फिर हाथी की तलाश में निकल पड़ता है, उसी हाथी की तलाश में जो छूट कर भागा था। यह हाथी तब तक जंगल पहुंच चुका है, पर एक दिन वो व्यक्ति उस हाथी को एक तालाब के किनारे देख ही लेता है और दूसरे लोगों से मिलकर गड्ढा बनाता है, उस पर घास फूस डाल देता है, और वो सारे लोग हाथी को दौड़ाते हैं और हाथी दौड़ने लगता है, और जैसे ही उस घास फूस के ऊपर आता है धड़ से नीचे गिर जाता है और फिर फंस जाता है। वशिष्ठ ये कहानी श्री राम को सुनाते हैं और कहते हैं वो हाथी मनुष्य है और वो फंस जाता है, और जब फंसता है उसके बाद ये भूल ही जाता है कि ऐसा भी एक जीवन था मेरा जब मैं स्वतंत्र था। धीरे धीरे उसे अभ्यास हो जाता है उस कारागृह का, और धीरे धीरे उसे अभ्यास हो जाता है उन दो संवेदनाओं का, एक सुख एक दुख, और उसी के साथ वो जीवन अपने जीवन को ढाल लेता है, और फिर अचानक उसके मन में तीव्र वैराग उत्पन्न होता है। वो दो जो दांत है वो एक है वैराग एक है विवेक, और एक दिन इच्छा उत्पन्न होती है मुक्ति की, मुमुक्षुत्व, भागता है और सामने दुश्मन है, वो मार सकता था दुश्मन को पर फिर भी छोड़कर भाग जाता है, और फिर दूसरी बार फिर कोई आकर्षण आता है और फिर फंस जाता है, और यही मनुष्य के जीवन की कहानी है। आकर्षित होता है, दुखी होता है, छूटता है, स्वतंत्रता का थोड़ा अनुभव करता है, फिर फंसता है। वैराग की जो साधना, वैराग के लिए साधना की क्यों आवश्यकता है? थोड़ा थोड़ा वैराग तो हम सब में है और है ही, परंतु साधना है उसे टिकाए रखने के लिए। जैसे पवित्रता की प्रतिज्ञा ले ली, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली, प्रतिज्ञा लेने से कोई जीवन भर ब्रह्मचर्य को कोई साध नहीं लेता। ब्रह्मचर्य को स्थिर रखने के लिए साधना की आवश्यकता है। उसी तरह वैराग्य भी आता जाता है, सुबह एकदम वैराग, दोपहर तक थोड़ा कम, शाम को भोग में चेतना डूब जाती है, तो वैराग आता है वैराग जाता है। इसी वैराग को स्थिर रखने के लिए साधना की आवश्यकता है, और ये जो दो दांत है, एक है वैराग और दूसरा है विवेक, हर चीज को परखना है कि जिसमें मैं आकर्षित हूं, जिसके मोह में मैं फंसा हूं, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, संबंध है, आज सुबह की साकार मुरली स्लोगन, चाहे वो कोई पुराना संस्कार हो, ये संस्कार से अब तक मैं छूट क्यों नहीं पा रहा हूं, क्यों वैराग नहीं आता? कल सात बातें बताई थी, एक रह गई थी जी, इंद्रिय सुख ज्ञान का दुश्मन है। कल सात बातें बताई थी इंद्रिय सुखों के दोष की, पहली क्या कर देता है, गुलाम बना देता है, हमें आसक्त कर देता है इंद्रिय सुख। दूसरा, बहुत थोड़ा सुख है उसमें, ज्यादा दुख है, क्रेविंग करता है, अंदर एक तलब उत्पन्न करता है जब वो वस्तु मिलती नहीं है, व्यक्ति जब आंखों के सामने नहीं होता है, बेचैनी उत्पन्न होती है, वही व्यक्ति चाहिए, वही वस्तु चाहिए, वही स्थान चाहिए। फिर धोखा, इंद्रिय सुख में क्या है, धोखा है, बरगलाते हैं हमें और एकदम फंसाते, दगा करते हैं, फिर भी उसके साथ साथ फिर फंसते हैं। हम भूल जाते हमारे पास भी दो नोकीले दांत है, मारने को इच्छा नहीं होती। हाँ, सोने की जंजीर नहीं होती और लोहे की होती, जंग लग रहा होता हम सीधा निकाल के फेंक देते, पर जब हीरे की है तो कैसे निकाले इन जंजीरों को, कितना अच्छा लगता है, उसका दोष देख ही नहीं पाते। हर व्यक्ति ऐसी एक जगह अटैच्ड है जहां उसके पास सारा जस्टिफिकेशन है उसको कायम रखने का। वो कहता है ये ठीक चल रहा है, और उसने उसको ज्ञान के साथ में ढाल लिया है, एडजस्ट किया है, ज्ञान की कुछ पॉइंट्स उसने जमा कर रखी है, और उसके साथ उसने अपने आप को कहा है ये जरूरी है। वैराग का अभ्यास वही अंतर्दृष्टि देखने के लिए, वैराग अर्थात एक्सरे मेडिटेशन है वो, ये एक शब्द है एक्सरे मेडिटेशन। एक्सरे मेडिटेशन अर्थात एक्सरे में कैसा दिखता है, एकदम माइन्यूट से माइन्यूट, फ्रैक्चर कहीं एक हेयर लाइन फ्रैक्चर भी दिखाई देता है, वैसा एक्सरे मेडिटेशन अर्थात अपने ही चेतना के भीतर घुस जाओ और देखो कोई लगाव तो नहीं, कोई आसक्ति तो नहीं, कोई बंधन तो नहीं, लेबल ही गलत है हमारे। नमक की डिब्बी पर किसका लेबल लगा के रखा, हल्दी का लेबल लगा के रखा, कैसे दिखेगा, पूरा किचन ढूंढ रहे कहीं नहीं मिल रहे, लेबल ही गलत है। अगला, बहुत एग्जर्शन, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंद्रिय सुखों को प्राप्त करने के लिए, और जब मिल जाता है इतनो सा वो मेहनत ढेर सारी, थोड़ा सा मिलता है। कोई एक रेसिपी बनाओ, कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत है, कितनी मेहनत है, मिलती है, खाया, खाने के बाद बस थोड़ी सी तृप्ति। अगला, क्षणिक है, सारे ही संसार के सुख, सारे ही संसार के संबंध, सारे रिलेशनशिप्स कैसे है, फ्लिटिंग, अभी है कल नहीं है। अभी अभी व्यक्ति बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत प्यार करता है, कुछ समय के बाद उसका प्यार चेंज हो गया, अब हम उसके लिए व्यर्थ हो गए क्योंकि उसकी बुद्धि कहीं और चली गई। ये अभी इस खूंटी पर टंगा था, अभी उस खूंटी पर, अभी इधर कल उधर, हाँ बंधन तो उधर भी है उसको, खाली तुम छूट गए। अगला, हैबिट फॉर्मिंग, और आज जो बताया ज्ञान का दुश्मन है इंद्रिय सुख। जितना जितना ज्ञान, आज सुबह की साकार मुरली, जितना जास्ती ज्ञान उतना जास्ती नशा, ये बड़ी नाजुक बातें हैं। तो निरंतर मन वैराग से भरा रहे उसके लिए क्या चाहिए, निरंतर चिंतन, एकांत में जाओ बैठो और सोचो इसको चालू रखना है या बंद करना है, इस संबंध को, इस मोह को, इस दोस्ती को, इस रिलेशनशिप को, प्राप्ति क्या है, नुकसान क्या है, फायदे और नुकसान तर्क से विवेक से निकालने। ज्ञान क्या कहता है, इसको चालू रखना चाहिए, या फिर जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ जो लोग हैं उनको यदि ये पता चल जाए तो क्या ये स्वीकार्य है, हमारा और उस व्यक्ति का संबंध, सीनियर्स, साथी, जूनियर्स, लौकिक, अलौकिक, अगर उन सबको इस संबंध के बारे में पता चल जाए तो क्या ये सर्वमान्य है, क्या सहमति वो लोग देंगे कि हाँ ये जो संबंध है ठीक चल रहा है। अगर नहीं है, इट्स अ टाइम टू स्टॉप, रुको। तो मन में वैराग उत्पन्न होता नहीं, ऐसा नहीं है, होता तो है, बार बार उत्पन्न होता है, पर जो राग है वो बहुत खतरनाक है, राग युक्तियां रचता है। हाथी छूट तो गया पर फिर फंस गया, दो प्रकार के वैराग है, एक परावैराग एक अपरावैराग। अपरावैराग भी बड़ा श्रेष्ठ है, जिसमें व्यक्ति को चीजों में कोई आसक्ति नहीं रहती है, अनासक्त हो जाता है। पर फिर भी ये रिलेटिव है, सापेक्ष है। हो सकता है ये वैराग राग में परिवर्तित हो जाए जीवन के किसी असावधानी के क्षण में। एक दूसरा वैराग है परा, हाईएस्ट, इसको कहते हैं सुप्रीम डिस्पैशन। इसमें व्यक्ति सब चीजों से परे निकल गया है, सब कुछ देख लिया है इस संसार का, हर चीज का अनुभव कर चुका है। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी, विवेकानंद का स्टेटमेंट है कि सब व्यर्थ है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब बंधनकारी है, कुछ भी करने जाओ बंधन ही उत्पन्न होता है। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी। वो अपरावैराग की स्थिति है, जहां व्यक्ति कहीं पर भी प्रभावित नहीं होता है। वो वस्तु, वो व्यक्ति जो प्रभावित करने जैसी है, वो भी उसे प्रभावित नहीं करती। स्तुति होती है अप्रभावित, निंदा होती है अप्रभावित, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय कुछ भी होता रहे, वो जैसे असंग है। वैराग अर्थात असंग की अवस्था, वैराग अर्थात अलिप्त अवस्था, वैराग अर्थात निर्लेप स्थिति। आत्मा निर्लेप नहीं है, पर आत्मा की जो संपूर्ण अवस्था है उसका स्वमान है मैं निर्लेप हूं, मैं निर्लेप आत्मा हूं, मैं अलिप्त आत्मा हूं, मैं असंग आत्मा हूं, अनासक्त आत्मा हूं, निर्लिप्त हूं, असंग, किसी का कोई संग नहीं। जब आत्मा स्वयं में स्थिर हो जाती, कल भी कहा था स्थित प्रज्ञा अर्थात स्वयं की प्रज्ञा में स्थिर हो जाना, फिर बाहर का कोई भी आलंबन नहीं, निरालंब अवस्था चेतना की वैराग्य, निराधार अवस्था चेतना की वैराग्य। तो कल हमने तीन बातें देखी थी। सबसे पहला इंद्रिय सुखों के प्रति दोष दृष्टि, खा लो जो खाना है उसके बाद में बैठ के सोचो क्या मिला, ठीक ठाक है सब कुछ। तो पहला इंद्रिय सुखों के प्रति दोष दृष्टि, दूसरा स्थान, तीसरा स्मृति स्मरण, किन चीजों का, चार चीजों का, निरंतर स्मरण करते रहे, जन्म का, मृत्यु का, जरा का, व्याधि का। पैनी दृष्टि से आर पार देखना, क्या हो रहा है, कहाँ है वो सब, कहाँ चला गया, सब खो गया। एक पेशेंट आता था, उसके पास कम से कम 7 से 8 मोबाइल रहते थे हमारे पास, और एक दिन ब्रॉड डेड, डेड बॉडी आ गई कैजुअल्टी में उसी की, हार्ट अटैक हो गया होगा, रिलेटिव को पता नहीं चला, जब लेके आए तब तक वो जा चुका था। हम साक्षी होके दूर से उसे देख रहे थे, ये वही व्यक्ति है। हर बार कॉल आता था एक नए नंबर से, इतने सारे, एक यहाँ एक यहाँ, एक नीचे की जेब में एक उधर की जेब में, 6 से 7 मोबाइल उसके रहते थे। हम दूर से देख रहे थे कि कहाँ है वो सब, सब गया। तो ये तीन चीजें कल देखी थी, उसी तीन का एक भाग। कल हमने स्थान देखे थे, कुछ निगेटिव स्थान, आज देखेंगे पॉजिटिव स्थान। कुछ ऐसे स्थान कि जिनका स्मरण करते ही, जहां जाते ही क्या हो जाता है, वैराग आ जाता है। अव्यक्त वाणी, 2 जुलाई 1970। देखो हम में से कितनों का जन्म भी नहीं हुआ था इस समय, हो सकता है इसके पहले का जन्म होगा यही। हम में से कई लोग जो है, जो विशेषता मधुबन निवासी है, शायद उनका ये सेकंड बर्थ भी की है, लाइफ है। वो यहां आए ही इसलिए क्योंकि पुरानी यादें हैं इस स्थान की जो उन्हें यहां खींच लाई। 2 जुलाई 1970, अभी यह तीव्र पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी दुनिया से बहुत सहज बेहद का वैराग लाने का साधन क्या है, कोई ने कुछ बताया, कोई ने कुछ बताया, जिन्होंने जो बात सुनाई वह सहज समझ सुनाई है ना। अगर सहज ही है तो बेहद के वैरागी तो सहज बन गए, अगर अपने से ही लगाया तो दूसरों से कैसे लगाएंगे। बेहद का वैराग कहते हैं, जो वैरागी होते हैं वह कहाँ निवास करते हैं। बहुत सरल युक्ति बताते हैं कि बेहद के वैरागी बनना है तो सदैव अपने को क्या समझो, मेहमान, और अगर बेहद के वैरागी बनना है तो सहज अपने को सन्यासी, तपस्वी, योगी, शमशान घाट में, और क्या समझो, मृत, और वानप्रस्थी, और ट्रस्टी, और किसने कहा तो सदैव अपने को, अगर बेहद का वैरागी बनना है तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझो। लेकिन मधुबन को खाली नहीं देखना, मधुबन है ही किसके साथ, मधुबन है ही मधुसूदन के साथ। तो मधुबन याद आने से क्या याद आता है, बाप दादा, दैवी परिवार, त्याग, तपस्या और सेवा भी याद आ जाती है। मधुबन तपस्या भूमि भी है। मधुबन एक सेकंड में सभी से त्याग कराता है, एक सेकंड में। कितने सेकंड हो गए रहते रहते, एक सेकंड में अनुभव होता है अचानक, एक वो पल, उसी के लिए सारी तैयारी है परम रियलाइजेशन की। उस एक पल में जिस चीज से हम आ सकते हैं वो एक क्षण के लिए व्यर्थ हो जाता है, एक क्षण में वो व्यर्थ हो जाता है। 10 साल की आसक्ति एक क्षण में जैसे समाप्त, ऐसे हो जाती कि जैसे कभी थी ही नहीं। वो एक क्षण पल, इन दैट मोमेंट लाइज द इटर्निटी। उस एक पल में पूरी सदी छिपी हुई है, उस एक पल का ही इंतजार है बस, कब आएगा, कब आएगा, वो आ जाए बस। यहां बेहद के वैरागी बन गए हो ना, तो मधुबन है ही त्यागी, वैरागी बनाने वाला, इसके उल्टा नहीं बनना है। जब बेहद के वैरागी बनेंगे तब बेहद की सर्विस कर सकेंगे, कहां भी लगाव ना हो। कितनी अच्छी अवस्था है ये, कहीं कोई लगाव नहीं है, किसी चीज से लगाव नहीं है, ना चुप रहने से लगाव है, ना बोलने से लगाव है, न खाने से लगाव है, ना न खाने से लगाव है, अपने आप से भी लगाव नहीं लगाना। तो औरों की तो बात ही छोड़ो, अपने से भी लगाव नहीं। बुद्ध के जीवन काल में दिखाया है, श्रावस्ती में एक गरीब किसान रहता था, दुखी था बेचारा, जैसे संसार के सभी लोग होते हैं, जैसे संसारी व्यक्ति दुखी ही होता है, उसी तरह वो भी दुखी था। उसके पास हल था, नंगल, उसको क्या कहते हैं मराठी में, वखर कहते, वखरनी, वो जो बैल जो घुसाते हैं नोकीले जमीन पर, बैल होता है वो नोकीला, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, हल तो है ही, हल और नंगल, ऐसे दो शब्द है, तीन चार होते हैं ऐसे। तो वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध उस गांव में पधारते हैं, और जैसे महात्मा बुद्ध को वो देखता है, एकदम जैसे प्रकाशित हो जाती है चेतना, ज्ञान का प्रकाश अंदर पड़ता है, और वो कहता है अब ये सब मैं नहीं कर सकता, मुझे आपके साथ हो जाना है, और वो संन्यास दीक्षा ले लेता है। परंतु संन्यास दीक्षा लेने के बाद, बुद्ध के विहार में रहने के बाद भी धीरे धीरे उसे वो जो वैराग आया था, उस वैराग से ही वैराग आ जाता है। उसे लगता है व्यर्थ ही मैंने संन्यास ले लिया, उसे पुराना जीवन याद आने लगता है, अपना गृहस्थ जीवन कितना अच्छा था तभी, यहाँ तो सेम वही दिनचर्या, कोई चेंज ही नहीं है, वही सन्यासी जीवन, एकदम रूखा सूखा जीवन, एकदम उसको बोरिंग लगता है। पर उसने एक युक्ति रची थी, जब इधर आया था तो अपने साथ वो हल और नंगल, वो दो चीज़ें लेके आया था, एक झाड़ के पास छुपा के रखा था। तो एक दिन बीच बीच में जाके देखता था, पुरानी यादों से छूटना इतना आसान भी नहीं है, सन्यास तो ले लिया, आ गए इधर, पर जरूरी नहीं है कि पूरा छोड़ दिया, तो बीच बीच में उसको जाके देखता था। एक दिन तो इतना वैराग आ गया, वैराग से, किससे, वैराग से ही वैराग आ गया, और सोचा अभी यहां रहने का कोई मतलब नहीं। जाता है वहां, हल को देखता है, हाथ लगाता है, पर फिर सोचता है अभी गृहस्थ बन जाऊं वापस, पर फिर विचार आता है कि नहीं, ये क्या कर रहा हूं मैं, फिर से उसी नर्क में जाने की सोच रहा हूं जिस नर्क से निकल कर यहां आया था, ये क्या विचार है। एकदम विचार परिवर्तन हो जाता है वापस, फिर कुछ दिनों के बाद में फिर बोर हो जाता है, फिर व्यर्थ लगने लगता है संन्यास, फिर गृहस्थ खींचने लगता है, फिर याद आने लगती है उधर की सारी बातों की, उधर के भोजन की, क्या यही यही वही वही भोजन, इधर रूखा सूखा, वो भी एक ही बार, बुद्ध के सन्यासियों के लिए निर्देश था भोजन ओनली वंस बिफोर 12 नून, उसके बाद में कोई भोजन नहीं। फिर जाता है, फिर देखता है अपने हल नंगल को और फिर वैराग आ जाता है। तो बाकी सन्यासी देखते ये क्या है, जाता जाता आता जाता, वहां जाता है आता जाता है, क्या करते रहता है। उसका नाम ही वो रख देते नंगल कुल। और एक दिन फिर से उसे वो याद आता है, इस बार फिर वो जाता है, पर इस बार जो जाता है और जैसे उस हल को देखता है, उस वखर को देखता है, ऐसा परम वैराग जाग जाता है एक क्षण में। उस क्षण में वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, उसके बाद वो फिर कभी नहीं जाता देखने। बाकी सन्यासी रहते हैं ना हमारे शुभचिंतक, जो हमारे पर दृष्टि गड़ाए रखते हैं, ये क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किसके साथ रहता है, उठता कितने बजे है, जो बताता है वो खुद भी करता है या खुद ही बस खाली भाषण तक सीमित है। जासूसों की कमी नहीं है तीव्र पुरुषार्थियों के जीवन में। बैठे हैं बहुत सारे, चाहिए भी। तो वो तुरंत उसके पास पहुंचते, कहते तुम उधर जाते थे अब क्यों नहीं जाते। वो कहते अब मुझे जरूरत नहीं, मैं मुक्त हो गया, अरिहंत हो गया हूं। बौद्ध धर्म में चार अवस्था है, चौथी जो अवस्था है मुक्ति की वो है अरिहंत। अरिहंत हो गया हूं, मुक्त हो गया हूं मैं, मुझे किसी चीज की अब जरूरत नहीं है। वो क्या शांत बैठने वाले है? दूसरे अपने आप को खुद ही घोषणा करता है। बुद्ध घोषणा करे तो ठीक कि ये संपूर्ण हो गया, खुद अपने ही मुख से कहता है कि मैं अरिहंत हो गया हूं। अरिहंत में डुबकी लग जाना, इसको ऐसा शब्द कहते हैं, अरिहंत में मुझे डुबकी लग गई है। एक पहली स्टेज है श्रोतापन्ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है, अचानक अशरीरी अवस्था हो जाती है। बीच में और दो अवस्थाएं, और फिर लास्ट फोर्थ स्टेज है अरिहंत। तो वो सारे शिष्य शांत थोड़ी ना बैठने वाले, भागे भागे जाते हैं बुद्ध के पास, गुरु जी को तो बताना पड़ेगा ना ऐसा एक व्यक्ति इस विहार में है। वो कहता है कि वो मुक्त हो गया है, अपनी घोषणा अपने मुख से कर रहा है, अरिहंत की डुबकी लग गई है। आप क्या कहते हो? अत्त ही अत्तनो ना तो अत्त ही अत्तनो गति। बुद्ध कहते हैं कि वो जो कह रहा है वो सत्य कह रहा है, वो मुक्त हो गया है, अब उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कोई चीज अब उसको प्रभावित नहीं कर देती। बुद्ध स्टैंप दे देते थे अपनी तरफ से। नांगल कुल वो शिष्य था जो बहुत बड़ा तपस्वी और अरिहंत को प्राप्त हुआ ऐसा योगी था। तो कितना समय लगता है बाबा क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, वैराग। तो आज हम अगली चार बातें देखेंगे, कल तीन देखी थी, उसी तीन में से एक जो था कल निगेटिव स्थान, कौन कौन से पॉजिटिव स्थान है वहां जाकर वैराग आता है। तो सबसे पहला तो है मधुबन, सबसे पहला तो है मधुबन। मधुबन में आते ही संसार के प्रति वैराग उत्पन्न हो जाता है, पर यह वैराग मधुबन का वैराग है, तुम्हारा नहीं। मधुबन में आते ही लोगों को शांति का अनुभव होता है, आहा कितनी शांति है, पर यह शांति तुम्हारी नहीं है, मधुबन की शांति है। यहां तपस्या करने को मन करता है, पर यह तपस्या तुम्हारी नहीं, मधुबन की दी हुई तपस्या है। जैसे वहां से दूर जाओगे, असर कुछ दिन चलेगा फिर समाप्त। तो सबसे पहला स्थान कौन सा है जहां आते ही वैराग आ जाता है ब्राह्मणों को? मधुबन, सहज वैराग। कोई वैराग शब्द का प्रयोग नहीं करता है पर वैराग आ जाता है, ऐसा कुछ तो है इस भूमि में, क्या है पता नहीं, पर कुछ तो अज्ञात सा कि यहां आते ही कुछ होता है, चेतना में कुछ हलचल, कुछ परिवर्तन होता है। धन्य भूमि वन पंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। ये धन्य भूमि है हे प्रभु, जहां तुमने अपने पैर रखे। तुलसीदास ने ये अयोध्या के लिए कहा है, पर वास्तव में ये किसके लिए है? इस भूमि के लिए। पहला मधुबन, दूसरा सेवा केंद्र सेंटर जो मिनी मधुबन है। ये भी स्थान ऐसा है संसार में, कहां विकारों के जंजाल, सेंटर पर जाओ बैठो, उस भाव से अपने आप वैराग आएगा। तीसरा सूक्ष्म वतन, ये भी वैराग दिलाता है, इसलिए बार बार सूक्ष्म वतन में जाना। जैसे शरीर है ही नहीं, ये स्थूल शरीर, स्थूल शरीर नहीं है तो स्थूल शरीर की जो भी आवश्यकता है वो भी मेरी कम कम होती जा रही है। फिर परमधाम, परमधाम भी एक स्थान है जो हमें वैराग लाता है, पर उस तरह के संकल्प खड़े करने हैं। कौन कौन से संकल्प? सात प्रकार के संकल्प। आत्मा की स्थिति परमधाम की, पहला स्वस्वरूप जो सात बातें हैं, ज्ञान स्वरूप, पवित्र, सुख शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, स्वस्वरूप में स्थित निज स्वरूप। दूसरा निराधार, मैं कैसी हूं परम धाम में, निराधार। फिर निराकार, निर्विकार, निराहार और निर्बंधन, निर्बंधन हूं वहां पे, और निर्विकल्प, निर्लेप, निर्लेप और निरसंकल्प, निर्वाण में हूं। मैं आत्मा निर्वाण में हूं नहीं, मैं आत्मा निर्वाण हूं। निर्वाण अर्थात वाणी से परे, निर्वाण धाम, पर मैं ही निर्वाण हूं। तो निर्वाण, निर्विकल्प, निरासक्त, निर्विकारी, निर्विचार, निरसंकल्प, निर्विकल्प, ये सारे निज स्वरूप, मैं निज स्वरूप में हूं, निर्वैर हूं, निर्मोही हूं, वो निर्विकार में सब आ गया। फिर भी उसको विस्तार करना है, परम धाम में जाते ही ये सारे संकल्प खड़े करने हैं मन में। अपने आप जैसा संकल्प आएगा स्थित हो जाएंगे, मैं निराधार हूं। इसमें रुक जाओ थोड़ी देर, किसी की आधार की जाए, मैं निराकार हूं, कोई आकार नहीं, कोई शरीर नहीं, रुक जाओ। मैं निराहार हूं, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। यहां का शाकाहारी भोजन, फिजिकल फूड, मॉर्टल फूड मुझे बहुत कम जरूरत है ही नहीं जरूरत। मैं निराहार हूं, निर्विकार हूं, निर्विचार हूं, निरसंकल्प हूं, निर्विकल्प हूं, निर्मोही हूं, निरंकारी हूं। निरंकारी यहां कहना थोड़ा गड़बड़ है, निर्विकार बोल दो उतना काफी है। और मैं निज स्वरूप में स्थित हूं, निर्बंधन मुक्त हूं, कोई बंधन नहीं है मुझे, मैं परम धाम में अपने घर में हूं, निज घर में हूं, निज स्वरूप में स्थित हूं। ये सारे संकल्प लाने, तो ये परम धाम। उसके बाद में पॉजिटिव प्लेसेस, स्वर्ग, परम सुख, सुख धाम, वहां की स्मृतियों को लाना, तो भी वैराग आएगा। सारी मुरली क्या है, मुरली में दो ही चीजें होती है, कंपैरिजन होता है, वहां वो था, वहां वो था, वहां वो था, वहां वो था, पूरा मुरली कंपैरिजन है। धर्म की बातें है, आ जाए ना धर्म, वहां का धर्म यहां स्थापित हो रहा है, वंडर है ना, मुरली में उस दुनिया का धर्म इस दुनिया में स्थापित हो रहा है, वंडर है ना। इस धर्म की शुरुआत ब्रह्मा से है, तो वो याद करना। अगला प्रकृति, प्रकृति का सानिध्य में जाते ही उस मौन और एकांत से अपने आप वैराग आता है। एकांत में जितना जो आत्मा रहती है उतनी उसमें पावर भरती जाती है, क्योंकि एकांत बहुत शक्ति है, एकांत में, मौन में बहुत शक्ति है। 3 दिन का मौन, 3 दिन का एकांत, वो इस 3 दिन के मौन और 3 दिन के एकांत से जब आत्मा बाहर निकलती है तो कुछ नया रियलाइजेशन लेकर आती है अपने बारे में। जिस मोह को पकड़ के रहता, लेबल ही गलत लगा के रखा था, अब उसको पता चलता है कि लेबल ही गलत था, कुछ नए रियलाइजेशन। ये बहुत अच्छी साधना है, कर सके तो, जो जिसकी सेवा परमिट करती है इस चीज के लिए वो करे। और वो वहाँ उस स्थान पर नहीं करना जहां आप रहते, कहीं और चले जाओ, कहीं पर और चले जाओ। 3 दिन संपूर्ण मौन, संपूर्ण एकांत, ना कुछ लिखना है ना कुछ पढ़ना है, ना लिखना भी नहीं और पढ़ना भी नहीं, कुछ नहीं, केवल मौन, केवल तपस्या। देखो क्या क्या अतीत के भूत सामने आते हैं, क्योंकि हम अपने आप को एंगेज रखते, अनऑक्युपाइड हो जाना कुछ दिन के लिए, ये एक साधना है। 6 महीने में एक बार तो होना चाहिए। 3 दिन नो रीडिंग, नो राइटिंग, नो मीटिंग, मौन, एकांत और प्रकृति, बस प्रकृति के सानिध्य में, नथिंग, नथिंग मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं। सारे आलंबन जो सुना है अभी तक, इतना जो लिखा है इतने सालों से, वो निकालो बाहर, अपने आप आएंगे ना। गाय क्या करती है, खा लेती है और बाहर निकाल के उसको उगारती है, वैसे हम भी तो कर सकते हैं। इतना डरने की बात नहीं है, मुरली कहाँ से मिलेगी, ये कहाँ से, ये नहीं पढ़ू मैं, वो नहीं पढ़ू, कुछ भी नहीं, नथिंग। क्या एडवांस में पढ़ के जाओ, फिर 3 दिन का पहले ही पढ़ के जाओ, पर ये एक अलग प्रकार की तपस्या है। 3 डेज और एक ही स्थान पर बैठकर जितना हो सके तो, एक ही स्थान, एक ही कमरा। तीन सन्यासी श्रीलंका पहुंचे, बौद्ध सन्यासी थे। उन्होंने बहुत अच्छी जगह देखी एक, और उन्होंने कहा यहाँ तपस्या करनी चाहिए। वहाँ एक किसान था, उसके पास एक झोपड़ी थी, एक घर जैसा था। उन्होंने कहा कि हम यहाँ तपस्या कर सकते हैं 3 मास, क्योंकि वर्षा काल है। उन्होंने कहा क्यों नहीं, आप करो, जो चाहिए मैं आपको दूंगा। उन्होंने कहा हमारा 3 मास के लिए मौन रहेगा, हमसे बात नहीं करना। उसने कहा बहुत, जैसी आपकी इच्छा। गरीब गांव का किसान है वो, 3 मास तपस्या की। 3 मास पूरे हुए, 3 मास के बाद तीनों आपस में बात करते, मौन तोड़ा, मौन तोड़ा। 3 मास पूरे हुए, पहले ने पूछा बोलो तुमने कैसे तपस्या की। पहले ने कहा कि मैंने तो बहुत अच्छी तपस्या की, 3 मास मैंने अपने मन को, ये जो कैंपस है, जो खेत और जहाँ घर है, उसके बाहर जाने ही नहीं दिया कहीं मन को, बस इसी स्थान पर रखा। दूसरे से पूछा गया तुम्हारी तपस्या कैसी रही। उसने कहा मेरी तपस्या तो बहुत ही अच्छी रही, मैंने अपने मन को इस कमरे के बाहर जाने नहीं दिया। तीसरे को कहा तुम्हारी तपस्या कैसी रही। वो कहते हैं मेरी तपस्या तो इतनी अच्छी रही कि मैंने अपने मन को इस शरीर के बाहर ही नहीं जाने दिया। सुबह से लेकर रात तक, ऊपर से नीचे तक स्कैनिंग, बॉडी स्कैनिंग, ऊपर से नीचे, नीचे से सारी संवेदनाओं को ही देखना, दिन रात केवल संवेदनाओं को देखना। यही बुद्ध की साधना है। बुद्ध का जन्म ही इसी साधना के लिए था। एक ही तो साधना है वहाँ पर, वहाँ भगवान वगैरह कुछ नहीं, केवल श्वास एंड संवेदना, आनापान सति एंड विपश्यना, बस दो ही है। बस एक एक सुई के नाखून इतना भी एरिया ना रह जाए जो छूटा छूट जाए देखने से, इतना हम देख सकते हैं इस शरीर को ऊपर। और देखते देखते ही फिर शरीर नहीं रहता है, फिर केवल किरने ही किरने, केवल तरंगे ही तरंगे रह जाती है अपने आप। आत्मा को वो लोग नहीं मानते, पर आत्मा स्थिति अपने आप आ जाती है बिना ये कहे कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि शरीर रहता ही नहीं है। फिर रहता कौन है जो देख रहा है, चेतना, आत्मा। तो वो कहता है मैंने 3 मास अपने आप को, अपने मन को शरीर के बाहर ही नहीं जाने दिया। तीनों भी महान तपस्वी है। हम यहां बैठे और पूरे दुनिया में मन घूम के आता है, चाहे कोई भी कारण हो, पर हम घूम के आ जाते। उसने कहा कि 3 मास एक ही कैंपस के बाहर जाने नहीं दिया मन को, बहुत बड़ी, वो पहले से ही तपस्वी थे, इसलिए तो मन में संकल्प आया कि अच्छा स्थान दिख रहा है, कितनी खुशी हो गई। कोई दूसरा देखे तो कहेंगे यहां दुकान है क्या, किराना है क्या, ये है क्या, वो है क्या, कुछ भी नहीं है, दुखी हो जाते। ये सन्यासी खुश हो गए तीनों कि यहाँ कुछ नहीं, हम संसार के संपर्क में ही नहीं आएंगे। स्थान तो प्रकृति एक ऐसा स्थान है जो जितना प्रकृति के साथ रहता है, बीच बीच में जाता है, जरूरी नहीं है कि कुछ दिन ही जाए, कुछ घंटे, एक घंटा, आधा घंटा भी चला जाए, एक्सट्रीम एक्टिविटी, ढेर सारी सेवाएं, और अभी अभी निकल गए वहां से एकांत में, जैसे कोई है ही नहीं, बिल्कुल मौन, पिन ड्रॉप साइलेंस। अभी अभी लोगों के साथ, अभी अभी वहां से निकल गए, किससे कोई मतलब नहीं, ये रियल वैराग्य है। अभी अभी उधर, अभी अभी इधर। ऐसा नहीं कि उसके प्रति घृणा है, हायर कॉन्शियसनेस जो है उसको लोअर कॉन्शियसनेस के प्रति कोई निगेटिविटी नहीं है, निषेध नहीं करती है। हायर हायर जाते जाते वो अपने आप छूटता जाता है। दिस इज रियल वैराग। हायर कॉन्शियसनेस डजंट निगेट लोअर कॉन्शियसनेस। वो हायर स्टेज है, ट्रांसडेंस, ऊपर ऊपर जाने की अवस्था है। तो नेचर, और कौन से स्थान है इसके अलावा भी पॉजिटिव, मंदिर, पिलग्रिमेज प्लेसेस। नफरत नहीं करना, ये देखो मंदिर में अभी तक पूजा कर रहे, अरे शांति से तुम जाके योग करो ना वहां। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, एकदम एकांत होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। कितने पावरफुल वाइब्रेशंस होते चर्च के। हम लोग जाते थे चर्च में, बैठते थे, वो बड़े बड़े टेबल होते थे वहां और डेस्क, तो लोग आते थे, हर एक आता था, प्रार्थना करता था, कुछ तो मांगता था, जीसस क्राइस्ट की मूर्ति, और शांति से जाता था एकदम। सब लोग प्रेम से बात करते हैं, सारी सिस्टर्स, नंस, और वो जो संगठित कॉन्ग्रीगेशन प्रेयर होती है उसमें ऐसी एनर्जी डेवलप होती है वहाँ पर, उस चर्च में, बहुत पावरफुल। बहुत प्यार से रहते हैं सब लोग। उसी तरह कहीं पे भी जाओ, गुरुद्वारा, कितनी सेवा करते हैं वो लोग, खाके जाओ, बिल्कुल छोड़ते ही नहीं है, बिल्कुल खाके जाना ही है, तुमको तो छोड़ेंगे ही नहीं। हमको याद है वो बठिंडा गए थे तो वहाँ गुरुद्वारे में बहुत बहुत बहुत, मतलब आखिर में फ्रूट्स पे बात पहुंच गई तो वो लोगों ने माना, नहीं तो बिल्कुल मान नहीं रहते। मानते ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार उनका। फिर तो ये कितने वाइब्रेशंस, कौन से लव वाइब्रेशंस है वहां पे, निस्वार्थ सेवा के वाइब्रेशंस से, इतना प्यार, इतना प्यार। तो ये ऐसे जो स्थान होते हैं वहां पे भी बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं। उन स्थानों पे मौन में जाके बैठ जाओ, मंदिर जो ऐसे चट्टान पर मंदिर होता है ना एक पहाड़ों पर, एकदम एकांत सन्नाटा छाया हुआ होता है आसपास। हाँ, कौन सा? गौतम ऋषि नहीं, अंदर गौमुख के अंदर। अच्छा, हाँ हाँ, वहीं तक गए और आ गए, किसने बोला नहीं अंदर जाओ जाना पड़ेगा। तो ये स्थान, तो ये सब स्थान क्या दिलाते हैं? वैराग। तो ये हो गया तीसरा। चौथा है स्वाध्याय। वैराग ऐसे ही नहीं आता है, वैराग के लिए रोज वैराग के बारे में पढ़ना होता है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, तो ही वैराग टिका के रहता है। क्योंकि साधना वैराग लाने की नहीं है, वैराग को टिका के रखने के लिए साधना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स है, एक तो स्पार्क की किताब है बाबा की, कि जिसमें बाबा की अव्यक्त महावाक्य है, बेहद का वैराग एक किताब है स्पार्क में, बीच बीच में पढ़ते रहना। एक भरतरी वैराग्य शतकम, आदिशंकर वैराग्य दिंडिमा, ये सब किताबें हैं जिसमें वैराग की बहुत चर्चा है। द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण, वचनामृत, कथामृत, ऐसी ढेर सारी किताबें हैं जिसमें वैराग की इतनी बातें कूट कूट कर भरी हुई है। नारद भक्ति सूत्र, वैराग की बातें भरी है, सहज वैराग। तो अध्ययन बहुत जरूरी है वैराग के लिए। अगर अध्ययन छोड़ दिया और सोचे हम बहुत बेहद के वैरागी है, तो कब राग उत्पन्न हो जाए और उस राग को हम कब गलत लेबल लगा दें, हल्दी अंदर है बाहर से नमक, अंदर काम वासना बाहर से प्रेम लेबल, और इसी लेबल के साथ खुश है कि हमारा सब ठीक ठाक चल रहा है, अंदर दारू भरी है बाहर से अमृत, और कमरे में रखा हुआ है ये, तुम ये नहीं, ये तो अमृत है, शुभी रस है, देखो क्या रखा, और अंदर है जहर तेजाब। तो स्वाध्याय बहुत 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 जरूरी है। उसके बाद में सत्संग। वैराग के लिए क्या चाहिए? सत्संग चाहिए। बिना सत्संग, लाइक माइंडेड, उस दिन भी कहा था, रिस्क टेकर्स की कंपनी, चुनौतियां जो लेते रहते ना, ऐसे लोगों की कंपनी है, कंपनी ले, जो नवीनता करते रहते रोज, इनके कतरों के जो खिलाड़ी है उनकी कंपनी, जो सुस्त है, डल है, इनकी पूरा मर चुके हैं जैसे अंदर से, कोई उमंग ही नहीं है कुछ करने का, कि कुछ करूं ऐसा कभी विचार ही नहीं आता है, एक रस स्थिति में रहते। तो स्वाध्याय, उसके बाद में बताया सत्संग। सत्संग के बाद में है विनाश, सर्वनाश, विनाश को सामने लाना है बार बार, तो थोड़ा वैराग आएगा। विनाश भी हम तो इतना सुन सुन के ये हो गया है कि विनाश की चर्चा होते ही कोई असर ही नहीं होता है, अभ्यस्त हो गए इतने कि इधर से सुनते मौत सामने खड़ा है, मौत का बाजार गर्म होगा, टिड्डियों मिसल, मच्छरों मिसल मैं तुमको ले जाऊंगा, ठीक है इधर सरसों मिसल पिस जाओगे, ऐसा इतना सुना है कि कुछ तुमको सबको ले जाऊंगा, तुम्हारे सब के शरीर मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ये क्या कौन सा भंबोर को आग लगनी है, इतना कॉमन प्लेस हो गया है कि इसका कुछ भी असर ही नहीं है पूरे निष्क्रिय हो गए ये सुन के, ठीक है ठीक है, वो शेर आया जैसा हो गया, इतने ढीठ की कोई, ये बाबा की किसी विनाश की कोई भी बात का कोई मतलब, हम अचल अडोल स्थिति में स्थित रहते कोई अप्रभावित बिल्कुल। तो आपको जितनी विनाश की जैसी बातें, जितना डराना होगा डरा दो, हम निर्भय है निर्भय, वो ठीक है आएगा देखेंगे, अभी तक तो आया नहीं, दिवाली आएगी नहीं, दिवाली आएगी नहीं, क्या दिवाली आई जा रही है, आई जा रही है अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो विनाश का तो ऐसा तो कोई होगा जिसको विनाश की बातें सुनकर वैराग आता है? बहुत कम होगा कोई, अगर होगा भी तो निरुआ मौत मल्लू का शिकार क्या क्या सुन, हाँ वो ठीक है, पर वो वैराग नहीं ला रहा है ये विनाश की। इस विनाश को देखना है आंखों से, जैसे ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा को अगर एक साल तक सुनाया गया होता तो शायद वैराग नहीं आता है, उन्होंने देखा, वैसे हमें देखना है इसको, सारी लाश पड़ी हुई है, उस लाशों के ढेरों पर हम चल रहे हैं, ये इसलिए इमर्ज करो, जो घर है ना जहाँ रहते हैं अभी अभी इमर्ज करो, उसको देखो वो भूकंप से नीचे चला गया, परिवार वाले अंदर दब गए, हम अकेले बचे, या फिर सारी दुनिया के सब लोग मर गए, हम अकेले ही बचे, किसके लिए रोए, सब जा चुके, ये सीन इमर्ज करो, सर्वनाश। और लास्ट स्मृति स्वरूप, स्वस्वरूप की स्मृति, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इसका चिंतन करते रहेंगे तो धीरे 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 क्या होगा, मन में वैराग दृढ़ होगा। मीरा कहती है, बाला मैं वैरागन होगी, बाला मैं वैरागन होंगी, जिन भेषा मेरे साहेब रिझे, सो ही भेष धरूंगी, बाला मैं वैरागन होंगी। वो कहती है मुझे क्या बनना है, वैरागन बनना है। वैराग शब्द में कितना अमृत जैसे प्रोनाउंसिए उसका ध्वनि है, किसी संसारी के कान में वैराग कहो तो भाग खड़ा होता है, उसको पसंद नहीं ऐसे शब्द, संन्यास, वैराग, तपस्या, ये शब्द बिल्कुल भी उनको अच्छे नहीं लगते, पर एक जो तपस्वी आत्मा है उसके लिए वैराग जैसे मुंह मीठा हो जाता है, टॉनिक। मीरा देखो क्या कहती, मैं वैरागन बनूंगी, कहा तो कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेस, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो छिटकावा केस, बाला मैं वैरागन होंगी, प्राण हमारा वहां बसत है, जहां तो खाली खोड़, मात पिता परिवार सहूं, कही ये दिन का होड़ तोड़, बाला मैं वैरागन होंगी। ये इच्छा उत्पन्न हो जाए कि मुझे वैरागी बनना है, मुझे भोगी नहीं बनना है, भोगियों की लिस्ट में मेरा नाम ना हो, हमारा नाम किस लिस्ट में हो, तपस्वियों के, वैरागियों की लिस्ट में। भगवान को वैरागी बहुत प्रिय है, वह स्वयं भी तो वैरागी है ना, सम्मान की कामना ना अपमान का भय, ये वाक्य बहुत अच्छा है, इसको लिख के रखना है, ना सम्मान की कामना ना अपमान का भय, ये वैराग की स्थिति है। सब कुछ शरीर और संसार, शरीर मिट्टी, संसार व्यर्थ, यह है वैराग की परिभाषा। शरीर क्या है, मिट्टी, अपने ही शरीर से मोह नहीं तो किसी और के शरीर में कहां फंसू, अपने ही शरीर को हाथ लगाने की इच्छा नहीं किसी और के शरीर को क्या हाथ लगाऊं, अपने ही शरीर को देखने की इच्छा नहीं किसी और के शरीरों को क्या देखूं। ओम शांति। जी।